ओम शांति। बाबा ने हम सभी को लक्ष्य दिया है। जिस दिन पढ़ाई पढ़ना शुरू किया तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया देवी देवता बनने का। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अपना लक्ष्य होता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो इंजीनियर्स बनते हैं। तो हर कॉलेज में जब जाते हैं तो उनको पता रहता है कि पास आउट होने के बाद उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होंगे। ऐसे ही यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम कौन से क्वालिफिकेशन धारण करने के लिए पढ़ रहे हैं? देवी देवता बनने के लिए, दिव्यता को धारण करने के लिए हम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दूसरे सत्संगों में केवल कनरस है, केवल सुनते हैं बहुत अच्छा अच्छा कर करके फिर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। तो उसके अनुसार जब पढ़ाई रोज हम मुरली सुन रहे हैं, हमारा एग्जाम कहाँ होता है? उस कॉलेज में तो डेट्स मुकरर होता है कि इन डेट्स में इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम कब है और ये कोर्स कब तक है? चार साल का कोर्स है, आठ साल का कोर्स है, दस साल का कोर्स है, एग्जाम्स कब है? जीवन भर का कोर्स है और एग्जाम हमारा हर दिन, हर पल हमारा एग्जाम है कि उसके लिए हमें तैयार रहना है। उस यूनिवर्सिटी में तो निश्चिंत है, सारा साल हमें पढ़ाई ना करे तो भी चलेगा। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं सारा साल पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट दो तीन मास या फिर एक मास में भी बैठ करके अच्छी तरह अपने आप को कमरे में लॉक करके पढ़ाई पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन में पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। हम ये कहें हाँ विनाश काल आएगा ना, तब मैं बैठ करके तपस्या कर लेंगे, अच्छी तरह आठ घंटा बैठ करके तपस्या कर लेंगे, अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे, ये संभव नहीं है, है ना? तो हर दिन हमारे लिए तैयार करने की जरूरत है, तब जाकर के हम इष्ट बन सकते हैं, तब जाकर के हम देवी देवता बन सकते हैं, और ये ज्यादा अगर पुरुषार्थ करते हैं तो अष्ट में आ सकते हैं। आठ के मणके या 108 के मणके में अगर आना है, इतना ऊंचा लक्ष्य रखना है। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर रीति से कहा, यह अष्ट शक्तियां आपको अष्ट में ले जा सकता है। तो अगर हम दूसरे बातों में ज्यादा ध्यान न देकर के केवल हम अष्ट शक्तियों के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं तो जरूर हम इष्ट बहुत जल्दी बन सकते हैं और ऊंचा पद अष्ट में आए या ना आए, क्योंकि वो पोजीशंस एक्चुअली भर गया होगा दादियों से, तो इसीलिए एटलीस्ट उसके बाद के जो पोजीशंस है वो हम पा सकते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं, क्योंकि अष्ट शक्तियों का लेसन हमने कब सुना था? आपने कब सुना था अष्ट शक्तियों का लेसन? जब आपने कोर्स किया था, कोर्स जब किया था तो तब सुना था अष्ट शक्तियों का लेसन। लेकिन क्या एक एक शक्ति का अभ्यास हमने किया है? किया है? आज कर लेते हैं, एक एक शक्ति का उपयोग हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम करें, कैसे उसको यूज करें। ये हमारा कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कोई ऐसा पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध का स्थल नहीं है, कर्म क्षेत्र ही हमारा कुरुक्षेत्र है, इन शस्त्रों को यूज करने की हमें जरूरत है इस कर्म क्षेत्र पर, है ना। अलग अलग शस्त्र अलग अलग शत्रु को संहार करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए परिस्थिति अनुसार कौन सा शस्त्र हमें यूज करना है, हमारा शस्त्र है शक्तियां, है ना। तो इन शक्तियों को जब हम यूज करते हैं तो शक्तियां हम बन सकते हैं, इष्ट बन सकते हैं। तो सबसे कौन कौन सी शक्तियां हैं बाबा ने जो बताई है, अष्ट शक्तियां, जो अष्टभुजाधारी हमको बाबा कहते हैं, तो अष्टभुजाएं हमारा कौन कौन सा है, अष्टभुजाओं में अष्ट शस्त्र है, वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और संयोग की शक्ति। तो चलिए सबसे पहले शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति या पावर टू बैकअप, पावर टू विड्रॉ। इसमें हम कछुए के बारे में बताते हैं कि कछुआ जब चाहे अपने हाथ पैर अंदर ले सकता है, क्यों, क्योंकि ऊपर से उसका जो शेल है वो बहुत सख्त है। तो हम इस शक्ति को कहां उपयोग करते हैं, कहां यूज करते हैं, जब हम योग करने बैठते हैं तो सारे कर्मेंद्रियां सभी तरफ से विड्रॉ करके संकीर्ण करके अपने आप को अंदर के तरफ लेकर के फोकस करने की जरूरत है। और कर्म करते समय भी बीच बीच में इसका हमें अभ्यास करने की जरूरत है। क्या हम अपने सराउंडिंग्स जो भी वातावरण है उससे अपने कर्मेंद्रियों को विड्रॉ करके अंदर के तरफ लेकर के अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, आत्मिक स्थिति इसको कहते हैं, है ना। आत्मिक स्थिति के अभ्यास में, आत्मिक स्थिति क्यों अभ्यास नहीं होता है, क्यों अनुभव नहीं होता, क्योंकि वातावरण से या सराउंडिंग से हम अपने कर्मेंद्रियों को विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, अंदर के तरफ ले नहीं जा सकते हैं, जाते हैं, इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं जब सागर में जब तूफान होता है ना, तूफान का जो मूवमेंट है वो स्पाइरल होता है, ये स्पाइरल मूवमेंट करते 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 वो आगे बढ़ता है। अगर कोई जहाज उस तूफान के चपेट में आ गया तो फिर वो डूब जाता है, लेकिन अगर कैप्टन होशियार है तो उसके तूफान के बीच की जगह पर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि बीच में, सेंटर में, तूफान के सेंटर में वहां एकदम शांति है, चारों तरफ तूफान है। अगर शिप वहां पहुंच गया, बीच में, सेंटर में पहुंच गया, एकदम सुरक्षित है। हमारे जीवन में भी चारों तरफ तूफान है कि नहीं है, परिस्थितियों का तूफान, प्रॉब्लम्स का तूफान, बहुत सारे तूफान है, लेकिन उसके चपेट में आ गए तो हम डूब जाएंगे। इसीलिए यहां अंदर के तरफ जाने की जरूरत है। वो जो बीच की जगह है उसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आंख कहते हैं। हमारी आंख कहाँ है, आत्मिक स्थिति, उसमें जब स्थित हो जाते हैं एकदम शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी अभ्यास करते हैं आसपास के वातावरण से अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करें और ये विजुलाइज करें कि आपका शरीर एक कुटिया है, और मेरे आंख, कान, मुख, ये सब खिड़कियां हैं जिसके थ्रू मैं देखती हूं दुनिया को, सुनती हूं और इस दुनिया के साथ मेरा कम्युनिकेशन होता है इन खिड़कियों के आधार से, इन दरवाजों के आधार से। अपने सब खिड़कियां दरवाजा बंद कर दें, आंख, कान, नाक, मुंह, इस शरीर रूपी कुटिया के अंदर बहुत सुंदर एक दिया जल रहा है, आत्मदीपक। वो दीपक मैं हूं, मुझ आत्मा की रोशनी से ये पूरा कुटिया, इस कुटिये के अंदर रोशनी है मुझ दीपक के कारण से। आत्मिक रोशनी को देखने की कोशिश करें, मैं आत्मा ब्रुकुटी के बीच में बैठकर आंखों द्वारा देखती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, लेकिन मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूं, राजा हूं। कंट्रोलर हूं, जो मैं बोलना चाहूं वही बोलूं, जो मैं देखना चाहूं वही देखूं, जो मैं सुनना चाहूं वही सुनूं। मैं आत्मा मालिक हूं। ओम शांति। यह अभ्यास बहुत सहज है, लेकिन बीच बीच में सारा दिन जब हम करते हैं तो आत्मा सशक्त होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप। वैसे तो जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो अपना लगेज बहुत हल्का रखते हैं, बहुत लाइट रखते हैं, लेकिन जीवन रूपी इस यात्रा में यहां हमारा वेट बहुत भारी है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन बहुत ज्यादा होता है। ब्राह्मण बनने के बाद नकारात्मक सोच ज्यादा नहीं होता, लेकिन व्यर्थ सोच ज्यादा होता है, तो उसको आज हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। पावर टू पैकअप या समेटने की शक्ति माना, जो अनावश्यक है सब चीजों से अपने आप को समेट लेना, अपने मन और बुद्धि को हल्का रखना। तो व्यर्थ क्या होता है, अक्सर करके पास्ट के बारे में हमारा ज्यादा चिंतन चलता है, 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा बोला था, तो वो सारी यादें नकारात्मक यादें, दुखदायी यादें, व्यर्थ यादें मन को भारी कर देता है। तो इसीलिए आज उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो अनावश्यक जो सोच है, भविष्य की चिंता, भय क्या होगा उसके बारे में भी हम ज्यादा जब सोचते हैं वो भी व्यर्थ हो जाता है। निश्चय की कमी जब होता है तो फिर हमेशा नेगेटिव चलता है ना, भविष्य के बारे में। तो सभी के पास नोटबुक और पेन है, नोटबुक और पेन है। पहले अब हम पास्ट के बारे में देखेंगे। पास्ट में कोई भी आपको बहुत दुख दिया होगा, जो बहुत दुख आप लेकर के चल रहे हैं, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोला था, किसी के साथ अनबन, छोटी सी बात के लिए अनबन हो गया हो और उसके साथ बात करना बंद हो गया हो, लेकिन मन के अंदर बहुत व्यर्थ चिंतन उसके बारे में है, तो उसको आज यहां खत्म करने की जरूरत है। उसको खत्म कैसे करेंगे, उसको खत्म कैसे करेंगे, उसको क्षमा करके, क्षमा करें। उसको आप विजुलाइज करें, कोई भी व्यक्ति जिसके प्रति आपको नफरत है, घृणा है, या बहुत दुख आपको दिया है जिसने, उसको आप विजुलाइज करें, आत्मिक दृष्टि से देखें और उसको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे ना, तब तक वो खत्म नहीं होता है ना। अगर इस समय आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इतना कुछ भरा हुआ है उसके बारे में, तो क्या करेंगे? जो कुछ भी गुस्सा है, नफरत है, घृणा है, सब कुछ लिख लीजिए। उसको जाकर के तो सुना नहीं सकते हैं ना, नहीं तो फिर संबंध बिगड़ जाएगा। उसको लिख लीजिए, लिख करके आपका खाली कर दीजिए। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, लिख लीजिए, लिख करके खत्म कर दीजिए। अगर किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, अनबन है, मन मुटाव है, या नेगेटिव है, जिसके प्रति नेगेटिविटी है, जो भी आपके मन के अंदर है, वो सारा कुछ खाली करके, खाली करने के बाद क्या करना है, उस पेज को फाड़ लीजिए। उस पेपर को फाड़ लेंगे, फाड़ करके छोटे 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 टुकड़े करके उसको डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है, हो सकता है ये? तो जैसे आपका जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उसके प्रति खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उसको स्टोर करके जा रहे हैं, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, आप बहुत भारी हो रहे हैं। उसको खाली करने का तरीका है, लिख करके उसको फाड़ करके फेंक दीजिए और बाद में नेक्स्ट पेज में लिखकर आप उसको क्षमा करना शुरू करेंगे। तो इस रीति से आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर सकते हैं, बहुत ही लाइट महसूस करेंगे और उस आत्मा के प्रति भी हमारी भावनाएं नेगेटिविटी से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये एक समय अभ्यास करने से नहीं होगा। तो ये जो भी आपको टिप्स मिल रहा है, आप लिख करके रखेंगे। जब भी ऐसे नेगेटिव भावनाएं आती है किसी के प्रति, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं आप। तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। जब भी परिस्थितियां आती है तो सहन करना कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन बाबा ने क्या कहा है सहन शक्ति के बारे में, जो आत्मा शक्तिशाली है वही सहन कर सकती है और जो सहन करती है वही आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, है ना। अगर शक्तिशाली बनना है, अष्ट में आना है, इष्ट बनना है, तो सहन करना सीखना होगा। तो सहन कैसे करें? जैसे बाबा कहते हैं मूर्ति बन रहे हैं, मंदिरों में मूर्ति रखते हैं, मूर्तियों की पूजा होती है, हजारों लाखों देवी लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं और मूर्ति से कुछ ना कुछ वरदान मांगते हैं, कुछ ना कुछ वो आशीर्वाद मांगते हैं। अगर हमें इष्ट बनना है, सहन करना सीखना होगा। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या सोचना है? क्या सोचना है? मैं मूर्ति बन रही हूं, मैं अष्ट बन रही हूं, इष्ट बन रही हूं। जब ऐसे सोचेंगे, जो भी तपेड़े मिल रहे हैं ना, जो भी परिस्थितियां आ रही है, गालियां मिल रही है या फिर नेगेटिविटी आ रहा है, उसको पी लेने की ताकत, उसको सहन करने की ताकत हमें मिलेगा जिस स्वमान से कि मैं मूर्ति बन रही हूं। जब तक हथौड़े नहीं लगेंगे, पत्थर मूर्ति नहीं बन सकता। अगर पत्थर पत्थर जैसा ही रहना है तो फिर सहन करने की जरूरत नहीं है। पत्थर से मूर्ति बनना है तो फिर पत्थर के जो तपेड़े हैं, तो उसको हमें वो जो है हैमरिंग जो है वो हमें सहन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये स्वमान हम ले। और दूसरी बात है, हर आत्मा के प्रति जब प्यार बढ़ता है, सहन करना सहज हो जाता है, है ना? माँ अपने बच्चों को सहन करती है, जहां प्यार है वहां सहन सहज हो जाएगा। एक बार बाबा ने बहुत सुंदर कहा था मुरली में, मेरे कारण सहन कर लो, विश्व कल्याण अर्थ सहन कर लो। जब हम उसको गहराई से सोचते हैं, अगर अनेकों का की भलाई हो रहा है, अनेकों का कल्याण हो रहा है, मेरा एक सहन करने से लाखों की भलाई हो रहा है, तो क्यों ना सहन करो, है ना? तो मूर्ति बनना है, इष्ट बनना है, तो सहन करना हमें सीखना होगा। नेक्स्ट शक्ति है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति, सागर में, सागर के तले में बहुत सारे हीरे मोती मिलते हैं, लेकिन ऊपर से बहुत सारा किचड़ा होता है, है ना? समाने की हर व्यक्ति के साथ क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, क्या उसको समा सकती हूँ, उसके लिए हमें क्या करना है? हर एक के अंदर हमें पॉजिटिव देखना है, हर एक के अंदर गुणों को देखना है, हर एक के अंदर उसकी विशेषताओं को हमें देखने की जरूरत है, है ना? तो अगर विशेषता देखनी है तो सामने से तो कैसे देखेंगे? अगर उसका कोयला दिख रहा है, नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है, अवगुण दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हम पॉजिटिविटी देखें, कैसे देखें? अगर पहली बार मिलते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके साथ जब रहने लगते हैं तब उसके नेगेटिविटी दिखाई देने लगता है, अवगुण दिखाई देने लगता है, थोड़े बहुत धीरे 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 उसके सारा कुछ दिखाई देने लगता है। तो उसके लिए क्या करें, क्या देखें उसके अंदर, कैसे देखें पॉजिटिविटी, गुणों को कैसे देखें? बाबा ने क्या कहा है? आत्मिक दृष्टि, है ना? आत्मिक दृष्टि एक बहुत अच्छा टूल है हमारा, बाबा ने जो बताई है। ये जितना हम अभ्यास करें आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि से क्या होगा, केवल वर्तमान को नहीं देख रहे हैं लेकिन अनादिकाल, जो हम परमधाम में जहां जब थे तो कैसे थे, परमधाम में थे तो कैसे थे, आत्मा कैसी थी? पॉइंट तो थी लेकिन गुणों में वो संपूर्ण थी, है ना। परमधाम में हम सभी जब आत्माएं रहती हैं तो हम अपने संपूर्ण स्थिति में होती हैं। ओरिजिनली हम संपूर्ण है परमधाम में, है ना। तो उस स्थिति को हमें इमर्ज करना है। ये आत्मा ओरिजिनली बहुत अच्छी है। जब आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वो हम नेगेटिविटी नहीं दिखाई देता है। तो और दूसरी बात, कई बार हम आत्मिक दृष्टि नहीं रख सकते हैं, कई बार बाबा ने ये भी युक्ति बताई है, एक दूसरे को फरिश्ते की दृष्टि से देखो। बाबा ने इसको छुदा है तो हम, वो भी उसका संपूर्ण स्थिति फरिश्ता है ना, तो फरिश्ते की दृष्टि से देखते हैं तो वो भी, उससे भी वो पॉजिटिविटी बढ़ता है। और तीसरी युक्ति ये है, बाबा ने कहा है देवता स्वरूप को इमर्ज करो। जो भी बाबा के बच्चे यहां बैठे हुए हैं सब तो सत्युग में आएंगे ही ना, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे जरूर। कोई सत्युग के आदि में आएंगे, कोई सत्युग के बीच में आएंगे, कोई त्रेता के आदि में आएंगे, कोई त्रेता के एंड में आएंगे, लेकिन सभी स्वर्ग में तो आएंगे ना, आएंगे जरूर, है ना। सभी देवता बनेंगे जरूर, एक जन्म तो एटलीस्ट देवता का होगा ही। उस स्वरूप को हमें इमर्ज करने की जरूरत है। अभी हम देवताई स्वरूप को इमर्ज करते हैं, अपना ही भी देवताई स्वरूप और दूसरों का भी देवताई स्वरूप को इमर्ज करके सर्वगुण संपन्न स्थिति में हम बैठेंगे। सभी के पास नोटबुक पेन है ना, तो नोटबुक पेन में सारा अष्ट शक्तियों का ये लिखते हैं, ऐसे ड्रॉ करें और फिर यहां चारों आठों ही जो शक्तियां हैं वो लिखेंगे। आठों ही शक्तियां लिख करके अब एक एक करके जाएंगे कि अभी तक हमने चार देखा है और चार शक्तियां भी आगे देखते हैं, लेकिन आपको यहां जीरो लिखना है और यहां दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ऐसे हर शक्ति को, शक्ति में अपने आप को मार्क्स देना है। समझ में आया? हर शक्ति में आपको मार्क्स देना है अपने आप को। यहां जीरो है, यहां टेन है। एक मिनट, मैं पूरा ड्रॉ करके फिर अभी दिखाई दे रहा है। अष्ट शक्तियां और एक एक में इस शक्ति का जीरो से दस के बीच में अपने आप को कितना देंगे, आपके अंदर समेटने की शक्ति कितना है, सहन करने की शक्ति कितना है, समाने की शक्ति कितना है, जीरो से दस के बीच में अपने आप को कितना आप अपने आप को मार्क्स देंगे। किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप को एनालाइज करना है। आज मेरे अंदर इन शक्तियों में से कितना परसेंटेज है, हमें परसेंटेज तो 100 ले जाना है ना, पूरी तरह हमें पास होना है तो 100 तक ले जाना, माना 10 तक ले जाना है। जीरो टू शून्य से 10 तक मार्क्स हम अपने आप को दे रहे हैं, है ना। तो जब 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 एक एक शक्ति के बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, अपने आप को देखे, अलग अलग परिस्थितियों में इन शक्तियों का उपयोग मैं कहाँ कर रही हूँ, कहाँ कहाँ फेल हो रहे हैं, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ हम पास हुए हैं, कहाँ हम फेल हुए हैं, हम ईमानदारी से अपने आप को देखें। ऐसा नहीं है कि हाँ अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं तो हर शक्ति हम दस दस देते जाए, ये ईमानदारी नहीं है। अगर हमारे पास सभी शक्तियां 100% होती तो क्या होता, हम संपूर्ण बन जाते, यहां नहीं होते, यहां नहीं होते, है ना। कुछ न कमियां हैं, ईमानदारी से अपनी कमियों को जब हम देखते हैं तब हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप में। इसलिए बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति। अगर मुझे रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर ये कमी है तो उसको मैं भर सकती हूं, है ना। तो इसीलिए ऑनेस्टली ईमानदारी से अपने अंदर देखें और वो शक्ति कितना है अपने आप। मान लीजिए आपके अगर मैं देखूं सहन शक्ति मेरे अंदर केवल 3 है, तो यहां आप डॉट लगाएं 3 में, यहां डॉट लगाएं। अगर आपको लगता है मैं एडजस्ट अच्छी तरह कर सकती हूं, 8 अपने आप को दे रहे हैं, तो ऐसे डॉट लगाएं। जितना मार्क्स दे रहे हैं वहां आप थोड़ा मोटा डॉट ऐसे लगाते जाएंगे। अभी अभी तक जो शक्तियां देखी हमने, 4 शक्तियों के लिए अपने आप को मार्क्स दीजिए, है ना। और फिर नेक्स्ट शक्ति को देखते हैं, परखने की शक्ति। सहन करना अच्छी बात है, एडजस्ट करना, समाना, ये बहुत, ये चारों ही जो शक्तियां हैं वो सॉफ्ट पावर्स कहते हैं उसको। जहां भावनाएं ज्यादा हम यूज करते हैं इन 4 शक्तियों में, विस्तार को संकीर्ण करने में और फिर समेटने में, सहन करने में, समाने में, सॉफ्ट थोड़ा सा भावना युक्त होते हैं। लेकिन फिर अभी ये 4 जो है, परखने की शक्ति, यहां बुद्धि का उपयोग ज्यादा होता है, है ना। भले हम एडजस्ट कर, लेकिन परखना भी हमें बहुत जरूरी है। हम किन किन को परखते हैं, व्यक्ति को परखते हैं और परिस्थिति को परखते हैं। जैसे ही व्यक्ति आता है तो उसको हाव भाव, उसके वाइब्रेशंस को देख करके हमें महसूस होता हो जाता है ये व्यक्ति किस लेवल का है। तो महसूस करने की शक्ति या परखने की शक्ति, परखने की शक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है। कहा जाता है हमारे मनमोहिनी दीदी, आप सभी ने सुना होगा, मनमोहिनी दीदी के अंदर परखने की शक्ति बहुत ज्यादा था। कोई भी व्यक्ति से मिलते थे, दीदी को समझ में आ जा, 2-5 मिनट के व्यवहार से दीदी को पता चल जाता, ये इस आत्मा के आदि मध्य अंत सब कुछ पता चल जाता था, है ना। और परिस्थितियों में भी हमें परखने की शक्ति यूज करने की जरूरत है। इस परिस्थिति में मुझे क्या डिसीशन लेना है, क्या कर्म करना है, उसको भी हमें परखने की जरूरत है। और परखने की शक्ति को कैसे हम बढ़ाएं, जितना बुद्धि हमारा साफ होगा। रामनाथ भाई जी कह रहे थे ना, मन और बुद्धि दोनों को यूज करना है। योग से मन क्लीन होता है, बुद्धि क्लियर होता है। मन साफ होता है और बुद्धि के अंदर क्लैरिटी आती है। बाबा ने कहा है कि बुद्धि आपका क्या है, 3रा नेत्र है। आंखों में अगर कोई कीचड़ा भरा भर जाता है, कीचड़ा गिर जाता है, तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता। कोई अगर आपका नंबर आ जाता है आंखों में तो फिर क्लियरली दिखाई नहीं देता, चश्मा पहनना पड़ता है। बिना चश्मे से हम आंख, सिर्फ आंखों से हम नहीं दिख, हमको दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बुद्धि भी हमारा तीसरी आंख है। अगर उसमें नंबर आ गया या फिर किचड़ा आ गया तो फिर क्लियरली नहीं दिखाई देता। योग से उसको, बुद्धि को हम क्लियर करते हैं, क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी कैसे आएगा, योग में करना क्या है, जिसके आधार से बुद्धि क्लियर होता जाएगा। विजुलाइजेशन, जितना क्लियरली हम चित्रीकरण करते हैं उतना हमारा योग बहुत सुंदर होता है। परखने की बुद्धि क्लियर होता जाएगा, परखने की शक्ति भी हमारा बढ़ता जाएगा, है ना। योग में हम तीन चीजों को यूज करते हैं। एक है मन से विचारों की उत्पत्ति करते हैं, थॉट्स को क्रिएट करते हैं मन से, बुद्धि से विजुलाइजेशन करते हैं, चित्रीकरण करते हैं, और तीसरी बात फील करते हैं, महसूस करते हैं। ये तीनों शक्तियों को हम यूज करके जब हम योग करते हैं तो योग शक्तिशाली हो सकता है और मन क्लीन और बुद्धि क्लियर होता जाएगा। तो चलिए हम अभी ऐसे चित्रीकरण, विजुलाइजेशन जितना आप क्लियर करें वो अब अभी अभ्यास करेंगे, क्योंकि योग में जब हम बैठते हैं केवल हम के सोचे नहीं लेकिन विजुलाइजेशन, जैसे फिल्म देखते हैं, मूवी जब देख रहे हैं तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, ऐसे विजुलाइजेशन भी हमारा बहुत, मूवी जिसको ऐसे देखते हैं ऐसे बहुत क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, तब जाकर के विजुलाइजेशन पावरफुल होगा, है ना। उसके लिए भी अभ्यास चाहिए। चलिए थोड़ा सा अभ्यास हम करेंगे विजुलाइजेशन का। क्या विजुलाइज करना चाहते हैं, क्या विजुलाइज करना चाहते हैं आप बताएं, उसका विजुलाइजेशन कर लेते हैं। अपनापन, सत्युग का करते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्यादा ये नहीं होता लेकिन सत्युग का, ठीक है। चलिए अपना सत्युगी स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने आप को देखें, कौन सा ड्रेस, मैं ये पर्टिकुलर नहीं बोलूंगी कौन सा ड्रेस ये वो, लेकिन अपने आप को विजुलाइज करना है, ठीक है। ड्रेस है, मुकुट है, कौन से कलर का है, कौन से ज्वेलरी का है, सब कुछ आपको क्लियरली विजुलाइज करना है। उसकी डिटेलिंग मैं नहीं करूंगी लेकिन आपको डिटेल में विजुलाइज करना है, ठीक है। सतयुगी स्थिति में स्थित हो जाए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अपने आप को सतयुगी दुनिया में इमर्ज करें, सबसे पहले अपने आप को देखें, आपका सुंदर ड्रेस बहुत ही चमकीला, आपकी गहने एक एक ऊपर से नीचे तक, मुकुट, हार, हाथों में कंगन, हर चीज को इमर्ज करें। आपके फीचर्स, आंख, नाक, मुख, आपका हाइट और शरीर, अभी विजुलाइज करें आप उठ करके बगीचे में घूम रहे हैं, बगीचे में प्रकृति को महसूस करें, एकदम सतो प्रधान प्रकृति, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे, फल और फूलों से लदे हुए। वहां और लोगों को भी आप देख रहे हैं, उनसे जाकर के मिल रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य। आप जाकर के उनसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशंस, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। एक दूसरे के प्रति अति प्यार, एक संपूर्ण देवता दूसरे संपूर्ण देवता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हर चीज को वहां महसूस करें। थोड़ी देर वार्तालाप करके पुनः वापस हम अपने इस संगम योगी संसार में आ जाते हैं। ओम शांति। कैसा लगा? छोटा सा ट्रायल था, ठीक है, 2 मिनट का 3 मिनट का ट्रायल था, लेकिन इसका और लंबे काल का अभ्यास करना है, क्योंकि जब योग में बैठते हैं केवल आत्मिक स्थिति का अभ्यास बोरिंग हो जाता है कई बार। और बाबा ने बहुत सुंदर मैसेज भी दिया था लास्ट ईयर, जब कोरोना बहुत ज्यादा था तो बाबा ने ये मैसेज दिया था कि बच्चे बहुत मायूस है, बहुत दुखी है, कोरोना के बारे में सुन सुन करके, देख देख करके बहुत दुखी हो रहे हैं। अभी आने वाले सतयुगी संसार को उनको अनुभव करने की जरूरत है। तो बाबा ने बहुत सुंदर ये मैसेज दिया था, तो तब से फॉरेनर्स ने एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया गोल्डन ड्रॉप्स करके, तो उन्होंने बहुत जैसे हर चीज महसूस करना शुरू किया, प्रकृति कैसे होगा, हर संबंध कैसे होगा, हमारा शरीर कैसे होगा, तो हर चीज हमें महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि हम उस दुनिया में जाने वाले हैं ना। जितना हम सतयुगी दुनिया को इमर्ज करते हैं, अभी वर्तमान समय का जो दुख है उससे हम दूर होना शुरू होते हैं, इसीलिए उसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, महसूस करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस रीति से विजुलाइज करते जाएंगे तो हमारे जो बुद्धि है उसके अंदर क्लैरिटी आता जाएगा और परखने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति में ये तराजू दिखाते हैं, ये न्याय की देवी दिखाते हैं, आंखों पर पट्टी दिखाते हैं। निर्णय हमारा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। आंखों पर पट्टी माना, अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की आदत डालने की जरूरत है। या ब्राह्मणों की भाषा में अगर सुनाए, बाबा की टचिंग को महसूस करने की शक्ति। बाबा क्या चाहते हैं, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं ये बात नहीं, बाबा क्या चाहते हैं, है ना, वो टचिंग। हमारा जो लाइन है बाबा के साथ, जो हमारा कनेक्शन है, वो बहुत ही क्लियर होने की जरूरत है। जब उस बाबा की टचिंग मुझे आ जाता है कि बाबा ये चाहते हैं, तो उस अनुसार हम कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहां भी कभी कभी गड़बड़ होता है, बाबा की टचिंग हमें महसूस होता है, बाबा ये चाहते हैं करना, लेकिन वो उस अनुसार करने की हिम्मत नहीं रहता है ना? तो ये दोनों बातें हैं, एक तो हिम्मत की जरूरत है उस अनुसार करने के लिए, लेकिन सबसे पहली बात है बाबा की टचिंग को कैच करने की शक्ति। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने ये कही है, टचिंग और कैचिंग पावर, है ना। जितना हमारा टचिंग और कैचिंग पावर पावरफुल है, उतना हमारा निर्णय शक्ति पावरफुल हो सकता है। हमारे निर्णय, हमारे जो डिसीशंस है वो एक्यूरेट हो सकता है। अभी टचिंग और कैचिंग पावर क्लियर कैसे करें, टचिंग और कैचिंग पावर कैसे क्लियर करें, कैसे करें क्लियर? आपको महसूस होता है बाबा क्या कह रहे हैं आपको? कितने लोग, कितने भाई बहने हैं इस सभा में, वो बाबा जो कह रहे हैं मुझे टच होता है, मुझे पता चलता है कि बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है, वो हाथ उठाए। और बाकी लोग? और कई बार ऐसा भी होता है जब स्थिति बहुत अच्छी होती है तब टचिंग पावर, बाबा क्या कह रहे हैं वो कैच कर पाते हैं। कई बार स्थिति जब अच्छी नहीं होती है तो कैच नहीं कर पाए, सदा काल वो स्थिति बनी रहे वो कई बार नहीं होता। कभी कभी टच होता है, कभी कभी टच नहीं होता है। तो उसके लिए ये अभ्यास करते चलिए। अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखें, सूक्ष्म वतन में आपकी सूक्ष्म शरीर और सामने ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर शिव बाबा, को क्लियरली विजुलाइज करें। सूक्ष्म वतन में केवल मैं और बाप दादा और कोई नहीं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं मुझे, बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कुछ कह रहे हैं आपको, बाबा क्या कह रहे हैं उसको कैच करने की कोशिश करें। सूक्ष्म वतन में शब्द नहीं है, केवल इशारे से, वाइब्रेशन से बाबा मेरे से बात कर रहे हैं और मैं उसको महसूस कर रही हूं। और बाबा को रिप्लाई भी कर रही हूं, जवाब भी दे रही हूं। बाबा और मेरा ये बातचीत हो रही है, बाबा कुछ कह रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में मैं कुछ कह रही हूं। बातचीत पूरा होते ही मैं पुनः इस संसार में आती हूं, इस शरीर में पहुंचती हूं। इसका अभ्यास हमें बीच बीच में करने की जरूरत है। जब भी आपको क्या मेजर डिसीशन की बात नहीं, बहुत बड़ा डिसीशन हो, बहुत बड़ा निर्णय हो, तभी मैं बाबा को पूछूं, यह बात नहीं है। छोटी मोटी बातें भी बाबा को पूछ सकते हैं, ऐसे हमारा संबंध ऐसे ही गहरा होता है, है ना? ये नहीं सोचना है कि बाबा तो इतना बड़ा है, ये तो भगवान है, तो वो मैं क्या छोटी छोटी बातें जाकर के पूछूं? छोटी छोटी बातें भी जाकर के बाबा से पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बाबा हमारे लिए फ्री बैठा हुआ है कि नहीं? बाबा बिजी होते हुए भी हमारे लिए फ्री है कि नहीं है? फ्री है कि नहीं है? हाँ, जब भी हम जाते हैं वतन में बाबा से मिलने के लिए, वहां तो है बाबा हमेशा हमारे लिए अवेलेबल, है ना? तो इसलिए यह अभ्यास, छोटी मोटी बातें भी बाबा के साथ शेयर करना है, यह आदत डालनी है। यह आदत जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बाबा के साथ हमारा संबंध गहरा होता जाएगा, ठीक है? उस रीति से हमारे डिसीशंस भी, हमारे निर्णय भी एक्यूरेट होगा। फिर सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। सहन करना भी एक शक्ति है, लेकिन सामना करना भी एक शक्ति है। सामना करने की शक्ति कहाँ यूज करना है? जब हम राइट कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, श्रीमत के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विघ्न पड़ रहे हैं। हम नए नए जब बाबा के घर में आते हैं, नियम फॉलो करना शुरू करते हैं, घर में बहुत सारे विघ्न आना शुरू होता है। फिर वहां सामना करने की शक्ति जरूरत है कि हमें श्रीमत के अनुसार चलना है, लेकिन बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, लेकिन श्रीमत को छोड़ना नहीं है, लेकिन उन विघ्नों को भी हमें सामना करने की जरूरत है, है ना? तो लेकिन उसको कैसे हम बढ़ाएं? हिम्मत, हिम्मत के आधार से सामना हम कर सकते हैं। हिम्मत कब बढ़ेगा? हिम्मत कब बढ़ेगा? जब हमारे अंदर निश्चय है, बाबा में निश्चय, अपने में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, इन चारों ही बातों में जब निश्चय है, हमारे अंदर हिम्मत बढ़ेगा, फिर सामना करने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ता है। तो इसीलिए निश्चय की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, सामना करना है तो। और लास्ट शक्ति है संयोग की शक्ति। संयोग सबसे चाहिए हमें, संयोग है ना? संयोग एक से या दो से नहीं, हर एक आत्मा से हमें संयोग की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं संगठन में बैठ करके योग करो। संगठन की शक्ति अपने आप में बहुत महान है। हाँ, अकेले भी पुरुषार्थ करना है, एकांत में भी रहना है, लेकिन संगठन में भी चलने की ताकत रखनी है, है ना। जब डांस करते हैं ग्रुप डांस, एक दूसरे के साथ ताल मिला करके डांस कर, अकेले कैसे भी डांस करो चलेगा, लेकिन जब ग्रुप में डांस करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, हमें हाथ वो ऐसा ऊपर करे, हमें भी वो हाथ ऐसा कर रहा है मैं ऐसा करूं, वो अच्छा नहीं लगता, है ना। सिंगल सोलो डांस कर रहे तो कैसे भी करे तो चलता है, लेकिन ग्रुप में एक साथ ताल से ताल मिला करके हमें डांस करने की जरूरत है। तो संगठन की शक्ति हम महसूस करेंगे। अभी थोड़ा उठेंगे, सब उठेंगे और आपस में आगे पीछे दो रोज है ना, लाइन है, थोड़ा दो चार लोगों का, चार पांच लोगों का अगर ग्रुप बना करके हाथ पकड़ लीजिए, भाई भाई पकड़ लीजिए, बहन बहन पकड़ लीजिए, राउंड होना चाहिए, लाइन में नहीं, राउंड होना चाहिए, राउंड राउंड, चार लोग आपस में आ जाए, राउंड में आ जाए, चार पांच लोग, छह लोग आपस में राउंड में आ जाए। यहां बहने, आप बहने नहीं, ऐसे नहीं, जो यहां दिखा रहे ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मली पकड़ लीजिए। हाँ, आप चार बने स्टेज पे आ जाइए, आपको देखेंगे तो सबको इजी हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपस में, अच्छा हो गया, सब सेट हो गया, राउंड में खड़े हो जाइए, सब हाथ पकड़ लीजिए। अच्छा ट्रांसलेशन, अच्छा राउंड में पकड़, राउंड में, हाँ अभी क्या करना है, अच्छी तरह पकड़ लीजिए चारों, जैसे ना पूरी तरह, हाँ ऐसे नहीं, एक एक फिंगर, एक एक अंगूठा पकड़े ऐसे नहीं, पूरी तरह पांचों ही, हाँ ऐसे 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 पहने पकड़ी है ना, ऐसे पूरी तरह, एक एक फिंगर नहीं पकड़ना है, पूरी तरह ऐसा पकड़ना, ठीक है, ताकि आपके वाइब्रेशंस वो फैले, है ना। हर आत्मा की वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन महसूस करें। अभी ये है संगठन की शक्ति को हम महसूस हम कैसे करें वो। अभी आपको क्या करना है, आपके राइट साइड जो भी व्यक्ति है उसको देखें, आपके दाएं तरफ जो भी व्यक्ति है आप उसको देखें, आप इसको देखें, आप उसको देखें, आप उसको देखें, अब उसको देखें, आप उसको देखें, ऐसे समझ में आया। कोई भी आंख नजर नहीं मिला रहे हैं, लेकिन हर एक नेक्स्ट व्यक्ति को देख रहे हैं, हर एक अपने राइट साइड के व्यक्ति को देखें, आपके दाएं तरफ के व्यक्ति को देखें, और उस आत्मा को खूब सारी दुआएं दीजिए, प्यार का के वाइब्रेशंस उस आत्मा को देखते हुए। आप नजर नहीं मिला रहे हैं, हर एक के राइट साइड के व्यक्ति को देखिए और उस व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए वाइब्रेशंस दीजिए, प्यार के वाइब्रेशंस, बाबा से प्यार के वाइब्रेशंस लेते हुए, आत्मिक प्यार के वाइब्रेशन उस आत्मा को दे रहे हैं, और हाथों से भी वो वाइब्रेशन फैल रहा है, और हाथों में वो महसूस करें कि वो प्यार के वाइब्रेशंस फैल रहा है सर्कल में। दृष्टि से भी आप प्यार के वाइब्रेशंस दे रहे हैं, और हाथों से भी आप प्यार के वाइब्रेशंस एक दूसरे को दे रहे हैं और धीरे धीरे सभी अपने लेफ्ट के तरफ मुड़ेंगे, आपके बाएं तरफ मुड़ेंगे और उस व्यक्ति को देखेंगे, बाएं तरफ लेफ्ट, लेफ्ट के तरफ बाएं तरफ उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए प्यार के वाइब्रेशंस दीजिए। अब अपने ग्रुप से बाहर नहीं देखना है, आपके लेफ्ट हैंड में जो व्यक्ति है जिसको पकड़ा है उस व्यक्ति को देखना है, दाएं हाथ में जिसको, अगर दो ही लोग हैं एक दूसरे को ही देखेंगे। आपके ग्रुप से बाहर किसको नहीं देखना है, आपके ग्रुप के अंदर उसको प्यार के वाइब्रेशंस दीजिए। दृष्टि से भी और हाथों से भी वो ट्रांसमिट कर रहे हैं शिव बाबा से निरंतर निस्वार्थ प्यार ले रहे हैं और इन आत्माओं को दे रहे हैं। ओम शांति। किस किस को महसूस हुआ? हाथों में कुछ लगा? कुछ लगा हाथों में? वाइब्रेशंस है ना? तो ये है संगठन की शक्ति, है ना? कहीं लोगों को ये मन में होता है ना कि हम सकाश तो दे रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसा होता है कई बार? पहुंचता जरूर है, आज प्रैक्टिकल प्रूफ हमने देखा वो पहुंचता है ना? तो सकाश देना कभी नहीं छोड़ना है। ब्राह्मण आत्माएं सकाश नहीं देंगे तो कौन देगा, है ना? तो ये जितना हम देते जाएंगे उतना हमें मिलता जाएगा, है ना? संसार को हमें जरूर देना है। तो चलिए लास्ट, अभी आपने सबने अपना अपना मार्क्स दिया, सभी कितना कितना कोई ये है पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा यहां लाइट डालेंगे, बोर्ड पर अनिल भाई थोड़ा सा लाइट डाल दे। ऐसे ही रैंडम मैं अपना पॉइंट लिख रही हूं, अपना अपना मार्क्स दे दीजिए जितना है। तो अगर सभी पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं इसका आकार देख रहे हैं आप, ये जो ये है ये पूरी तरह अस्त व्यस्त है ना? ये पॉइंट तो हमारा कहां होना चाहिए? हा? 10 होना चाहिए, एकदम सर्कल होना चाहिए ऐसे, हाँ? एकदम सर्कल होना चाहिए, लेकिन है अस्त व्यस्त अभी। तो यहां से यहां तक ले आना है, यहां से यहां तक ले आना है, हर शक्ति को वहां से वहां तक ले आना है ना? अपने आप को देखा, तो उसके बारे में और सोचिए, कहाँ कहाँ आप फेल हुए हैं, कहाँ कहाँ पास हुए हैं, और कितना, कौन सी शक्ति कितना हमें बढ़ाना है। रोज हम अपने आप को देख करके ऐसे एनालाइज करते हैं तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है चार्ट लिखना। जो व्यक्ति चार्ट लिखता है उसका पुरुषार्थ बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। चार्ट लिखना, अलग अलग तरीके से चार्ट लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार है कि रोज अष्ट शक्तियों को चेक करना, कहाँ मेरा आज शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, वो एनालाइज करना भी एक प्रकार से चार्ट देखना होगा। ठीक है, ओम शांति।